पिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय पेपर क्रिप्स मिशन। एक ओर तो ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक प्रश्न पर 8 अगस्त 1940 के प्रस्ताव से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, दूसरी ओर युद्ध की परिस्थितियां मित्र राष्ट्रों से ज्यादा प्रतिकूल होती जा रही थी। पूर्वी एशिया में जापान की सफलताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों को हिलाकर रख दिया था। यह महसूस किया जा रहा था कि जापानी आक्रमण का सामना भारतीयों की पूर्ण सहायता मिलने पर ही संभव है। कांग्रेस अपनी शर्तों पर यह सहायता देने को तैयार थी। जनवरी 1942 में कांग्रेस समिति ने फैसला देने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते ब्रिटेन ऐसी स्थिति पैदा करे कि भारत लोकतंत्र और आजादी के लिए लड़ाई लड़ सके। कांग्रेस के इस प्रस्ताव से उत्साहित होकर सप्रू जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री चर्चिल से मांग की कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करके सहयोग प्राप्त किया जाए, परंतु चर्चिल पुराने अड़ियल रास्तों पर अटे रहे। इटली को उन्होंने लिखा, मुझे आशा है कि मेरे सहयोगी समझेंगे कि संवैधानिक प्रश्न खड़ा करने में इस समय खतरा है और संवैधानिक परिवर्तन करने में तो और भी अधिक खतरा है। इटली ने इस नीति को अदूरदर्शी तथा आत्मघातक मानते थे। उन्होंने इस पर जोर दिया कि भारतीय समस्या का समाधान करने के लिए किसी उच्च अधिकार संपन्न व्यक्ति को भारत भेजा जाए। फरवरी 1942 तक पूर्वी एशिया में युद्ध की स्थिति और बिगड़ गई। जापान की सेना के हमले बर्मा और मलाया पर होने लगे। इस स्थिति से चीन के राष्ट्रपति चियांग काईशेक ने ब्रिटेन को सुझाव दिया, भारत की मांग की प्रतीक्षा किए बगैर ही ग्रेट ब्रिटेन को चाहिए कि यथासंभव उन्हें शीघ्र वास्तविक राजनीतिक शक्तियां प्रदान कर दे। इतना ही नहीं, भारत की स्थिति से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को अवगत कराते हुए उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत के प्रति अपनी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेगी तो वह एक प्रकार से भारत को शत्रु को भेंट कर देगी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार की भारतीय सहायता पाने हेतु संवैधानिक समस्या के समाधान की पक्षधर थी। वहां के विदेश मंत्री ने अपने संसद में कहा, हम मित्र राष्ट्र के पक्ष में भारत के स्वशासित राष्ट्र के रूप में हिस्सा लेने की आकांक्षा से हमदर्दी रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी चर्चिल की भारत नीति से असंतुष्ट था। फरवरी 1942 को रूजवेल्ट ने चर्चिल की घोषणा का कि अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होता है खंडन करते हुए कहा। रूजवेल्ट ने कहा कि चार्टर सारी दुनिया पर लागू होता है। सम्नर वेल्स के जो 1942 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज सचिव थे के अनुसार राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मिस्टर चर्चिल को इस बात पर राजी करने का अनुरोध किया कि भारतीय स्वाधीनता में और ज्यादा देरी न की जानी चाहिए। देश के अंदर मजदूर दल व प्रेस का दबाव था। देश के बाहर मित्र राष्ट्रों विशेषकर अमेरिका के दबाव के चलते चर्चिल के लिए जरूरी हो गया कि वह भारत की समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं तो कम से कम प्रयास करने का दिखावा करे। इसी के परिणाम स्वरूप 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। क्रिप्स प्रस्ताव। इस घोषणा में चर्चिल ने बताया कि क्रिप्स संवैधानिक सुधार संबंधी प्रस्तावों पर भारतीय नेताओं से बात करने और उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए भारत जाएंगे। क्रिप्स को निर्देश दिए गए थे कि वह न केवल बहुसंख्यक हिंदुओं से ही आवश्यक सहमति प्राप्त करे अपितु सबसे अधिक संख्या वाले अल्पसंख्यक जाति मुसलमानों से भी सहमति प्राप्त करे। प्रस्ताव का मसौदा 23 मार्च की कार्यकारी परिषद के समक्ष, 25 मार्च को भारतीय नेताओं के समक्ष था, 29 मार्च के पत्रकार सम्मेलन द्वारा जनता के समक्ष रखा गया। क्रिप्स प्रस्ताव की प्रस्तावना में भारत को संघीय गणराज्य बनाने की बात की गई थी तथा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत का दर्जा सब तरह से डोमिनियनों के बराबर होगा और वह अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी प्रकार से अधीन नहीं होगा। प्रस्तावित योजना के पहले भाग में डोमिनियन संविधान बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था। इस प्रक्रिया के अनुसार प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचन कराए जाते थे। विधानसभाओं के नवनिर्वाचित सदस्य द्वारा देशी राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर एक संविधान सभा का निर्वाचन करते हैं। निर्वाचन अनुपात निर्वाचक पद्धति से अनुपातिक निर्वाचन पद्धति से होता। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्वाचक मंडल के सदस्यों का 1/10 होती। प्रांतों को इस बात का अधिकार था कि वह प्रस्तावित संघ योजना को में सम्मिलित न होकर अपने लिए पृथक संविधान का निर्माण करे। संविधान सभा तथा ब्रिटेन की सरकार के मध्य संधि के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। भारत के डोमिनियन को साम्राज्य से पृथक होने का अधिकार होगा। योजना के दूसरे भाग में तत्कालिक व्यवस्था संबंधी परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था। इस सुझाव के अनुसार 1935 के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था। ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगी, परंतु वह मुख्य भारतीय लोगों के नेताओं का तुरंत और प्रभावशाली ढंग से राष्ट्रबंधन और संयुक्त राज्य के कार्यों में योगदान चाहती है ताकि उस कार्य को जो भावी भारतीय स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि निभाने में पूर्ण करने में सक्रिय एवं निर्माणकारी सहायता कर सके। कांग्रेस नेताओं के साथ अपनी वार्ता में क्रिप्स ने तत्कालीन व्यवस्था के संदर्भ में जो स्पष्टीकरण दिए उसके अनुसार 22 राय की परिषद के सभी सदस्य भारतीय हो जाते, प्रतिरक्षा विभाग भी भारतीय सदस्य को सौंप दिया जाता, किंतु प्रतिरक्षा संबंधी कोई भी ठोस अधिकार उस मंत्री को नहीं दिया जाना था। वह जनसंपर्क था, सैनिकों की जरूरत आदि जैसे कामों के लिए होता। वह योजना कांग्रेस को किसी भी तरह स्वीकार नहीं थी। उसके प्रति नेहरू ने अपना आक्रोश निम्न शब्द में व्यक्त किया, समकालीन सरकार का ढांचा उसी प्रकार रहेगा और 22 राय की निरंकुशता बनी रहेगी और हमें से कुछ लोग वर्दी पहनकर उनके सेवक तथा अल्पाहार गृहों इत्यादि की देखभाल करना आरम्भ कर देंगे। युद्धकालीन प्रस्तावों पर कांग्रेस के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने लिखा, मैं चाहता था कि ऐसी प्रथा तलाश दी जाए कि परिषद वस्तुतः मंत्रिमंडल के रूप में काम करेगी और 22 राय संवैधानिक परिधान की तरह। अगर हम इस नुक्ते पर संतुष्ट हो जाते तो यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते। आरंभ में क्रिस कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए तैयार थे, लिथियो ने अमरीश से उनकी शिकायत की। क्रिप्स ने खुले तौर पर एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार की बात की थी जिसका अध्यक्ष वायसराय होगा, किंतु क्रिप्स को भारत के गवर्नर जनरल तथा युद्ध मंत्रिमंडल का समर्थन इस मुद्दे पर प्राप्त नहीं हो सका। लिथियो ने साफ कह दिया था, कार्यकारिणी परिषद के विषय में जो मुझे वैधानिक अधिकार प्राप्त है उसका उपयोग करना मैं नहीं छोड़ूंगा। इंग्लैंड की सरकार ने लिथियो का समर्थन किया तथा क्रिप्स को अपनी स्थिति से पीछे हटना पड़ा। वह राष्ट्रीय सरकार के संबंध में आश्वासन देने में असमर्थ हो गए, अतः क्रिप्स मिशन असफल रहा। यद्यपि मिशन की असफलता का कारण उसकी तत्कालिक योजना थी, तथापि उसके दीर्घकालीन योजना के प्रस्ताव भी भारतीयों को स्वीकार नहीं थे। गांधी जी की दृष्टि में यह सुझाव टूटते हुए बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक के रूप में थे। प्रस्तावों के भारत के विखंडन की साजिश छिपी हुई थी तथा भारत प्रांत को अलग रहने की स्वतंत्रता देकर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को ही स्वीकार किया गया था, अपितु भारत के बालकनीकरण का रास्ता तैयार कर दिया गया था। लीग को प्रस्तावों से यह शिकायत थी कि इसमें पाकिस्तान की मांग को सीधा स्वीकार नहीं किया गया था। क्रिप्स मिशन को असफल बनाकर इंग्लैंड की सरकार ने प्रसन्नता का अनुभव किया। एडवर्ड रीज के शब्दों में, जब चर्चिल को भारत से यह खबर मिली कि क्रिप्स का मिशन असफल हो गया है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह मंत्रिमंडल के कमरे में ही नाचने लगा। यह प्रसन्नता स्वाभाविक थी, क्योंकि जैसा कि हेरल्ड लास्की ने संदेह व्यक्त किया, हमारा उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देना नहीं अपितु अपने मित्रों में एक प्रकार का यह प्रचार करना था। क्रिप्स को भेजा गया चर्चिल का तार स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट कर देता है। आपको इस परिणाम से यूं ही हतोत्साहित या निराश नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन और अमेरिका पर इसका प्रभाव पूर्ण रूप से लाभप्रद रहा है, और चाहे आपकी आशाओं की पूर्ति नहीं हो, परंतु आपने दोनों पक्षों की खूब सेवा की है। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा बीए प्रथम वर्ष हेतु यशपाल एवं गुड़वर की पुस्तक के द्वारा 27 दिसंबर 2007 को की गई।